राघव मित्तल आयशा से बात करने के लिए सिंघानिया विलाया हुआ था। वहां गौतम मित्तल ने राधिका को पहचान लिया था। बहुत पहले राधिका की फैमिली ने उसकी मदद की थी। राधिका की खराब तबीयत देखकर उसने राघव को रोक लिया था ताकि वो आयशा से कुछ न कहे। वहीं मित्तल फैमिली तो अब सिंघानिया विला से जा चुकी थी, लेकिन जाने के बाद वो अपने पीछे एक बड़े से तूफान को छोड़कर गई थी। राघव की बातें सुनकर राधिका की तबीयत खराब होने लगी। वो लगातार खांसी ले रही थी। राधिका की खराब तबीयत देखकर आदर्श उसके पास आकर बोले, राधिका क्या हुआ तुम्हें? थोड़ी देर पहले ही तुमने दवाइयां ली थीं, उनका कुछ असर क्यों नहीं हो रहा? मुझे लगता है हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। आदर्श राधिका से बात कर रहे थे तभी ऐशिका ने टेबल पर रखा पानी और वो दवाई उठाई जो उसने हॉस्पिटल में राधिका को दी थी। ऐशिका ने दवाई और पानी ले जाकर राधिका को दे दिया। जब तक राधिका की तबीयत खराब थी तब तक कोई कुछ नहीं बोला था। लगभग 10 मिनट में उनकी खांसी से उन्हें पूरी तरह राहत मिल चुकी थी। खांसते हुए राधिका का चेहरा लाल हो गया था, फिर भी वो गुस्से में आयशा की तरफ मुड़ी और चिल्लाकर बोली, अभी के अभी मेरे सामने घुटनों के बल बैठो। आयशा को यकीन नहीं हुआ कि राधिका उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। वो सिर हिलाकर बोली, लेकिन मॉम, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे नीचे बैठने को कह रही हैं। मैंने कहा अभी घुटनों के बल जमीन पर बैठो, राधिका ने इस बार सख्ती से कहा। परेशान होने की वजह से उन्हें फिर से थोड़ी खांसी आने लगी थी। आदर्श जल्दी से उसके पास गया और बोला, राधिका जाने भी दो, वो हमारी बेटी है और इतना भी बड़ा मामला नहीं था जो तुम उसके साथ इस तरह पेश आ रही हो। आप बीच में मत बोलिए आदर्श, आपकी वजह से ही आज इसका ये हाल हो गया है कि ये खुलेआम झूठ बोल रही है। किसी भी इंसान का कैरेक्टर उसकी पहचान होती है, लेकिन ये क्या कर रही है? पहले इसने डॉक्टर मर्चेंट के बारे में झूठ बोला तो फिर उसके बाद में ऐशिका का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही थी। क्रेडिट लिया तो लिया, उसके बारे में गलत बातें फैलाकर राघव को गुमराह कर रही थी। राधिका का गुस्सा आदर्श पर फट पड़ा था। ऐशिका को डर लग रहा था कि इस तरह राधिका के गुस्सा करने पर उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। वो उनके बीच में दखल देते हुए राधिका से बोली, प्लीज मिसेस सिंघानिया, आप इस तरह गुस्सा मत कीजिए वरना फिर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐशिका की बात सुनकर आदर्श ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा, तुम ही उन्हें यहाँ पर लेकर आई थी ना, तुम्हें अच्छे से पता था कि राधिका की तबीयत खराब रहती है, फिर भी तुमने एक बार भी उनका नहीं सोचा, तुम मारना चाहती हो क्या उन्हें? ऐशिका ने कसकर अपनी मुठ्ठियां भींच ली। वो अपने गुस्से को काबू करके बोली, मैं उन्हें यहाँ लेकर नहीं आई थी, आयशा की हरकतों ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। ऐशिका को राधिका की परवाह थी, इसी वजह से इतनी इंसल्ट होने के बाद भी वो वहाँ पर खड़ी थी। उसने अपनी गर्दन नीचे की, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसे ही गलत समझा जा रहा था। राधिका ऐशिका की तकलीफ को समझ सकती थी, वो भी नम आंखों से ऐशिका को देख रही थी। तभी आदर्श की नज़र राधिका पर गई। वो उससे बोले, ये लड़की बिल्कुल अपनी माँ की तरह बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, तुम इसकी बातों के जाल में मत फंस जाना। अगर इसे सच में तुम्हारी परवाह होती तो ये कभी मित्तल फैमिली के सामने ये सच आने ही नहीं देती कि आयशा ने राघव मित्तल सी बहन के साथ बुरा बर्ताव किया था। दोनों बहनें मिल बांट कर ये बोल देती कि दोनों ने मिलकर कॉल किया था, लेकिन नहीं, इसे तो महान बनना था, ऊपर से उन्हें भी यहाँ पर लेकर आ गई। राधिका से अब और आदर्श के ताने बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। भले ही वो ऐशिका को कह रहा हो लेकिन बुरा राधिका को लग रहा था। उसने आदर्श से सख्ती से कहा, बस भी कीजिए आदर्श, आप इस तरह दोनों बच्चों में भेदभाव करते हैं, तभी आयशा की ये हालत हो गई है। वो सही गलत करने से पहले कभी नहीं सोचती है क्योंकि उसे कभी गलत ठहराया ही नहीं गया। राधिका की बात सुनकर आदर्श चुप हो गया, लेकिन आयशा ने हैरानी से राधिका की तरफ देखकर पूछा, किस हालत की बात कर रही हैं मॉम आप? क्या हालत बना ली है मैंने अपनी, क्लियरली बोलेंगी? आयशा के पास अच्छा मौका था इमोशनल कार्ड खेलने का। उसने अपनी आंखों में आंसू भरे और बोली, ठीक है, मेरी ये हालत हो गई है, लेकिन मेरी इस हालात का जिम्मेदार कौन है ये आपको नहीं पता। आपकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। कौन सी फैमिली अपने परिवार के नाजायज बच्चों को इतना सिर पर चढ़ाकर रखती है? आपने हमेशा ऐशिका को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, आपको हमेशा ऐशिका मुझसे बेहतर लगती थी। राधिका हैरानी से आयशा की तरफ देख रही थी, लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकने वाली थी। उसने रोते हुए आगे कहा, जब से छोटी सी थी तब से हमारे बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे आपकी नजरों में ऊपर रहना है। आपकी अटेंशन पाने के लिए मैं हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर आई, खुद को परफेक्ट बनाया। अब भी नक्श राजवंश से शादी करने जा रही हूँ, सिर्फ आपके लिए, ताकि आप मुझे प्यार कर सके। लेकिन नहीं, आपको अभी भी ऐशिका दिखाई दे रही है। राधिका को इतना सब कुछ सुनाने के बाद आयशा ऐशिका की तरफ पलटी और तालियां बजाते हुए कहा, ऐशिका सिंघानिया, अब तो खुश हो ना तुम? पहले तुम्हारी मॉम ने मेरे मॉम डैड की शादी को बर्बाद किया और अब तुमने मेरी लाइफ को, तुमने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया है, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा प्यार करती है। कहने को तो तुमने सिंघानिया मेंशन छोड़ दिया था, लेकिन फिर बाहर जाकर जब डॉक्टर मर्चेंट बन ही गई थी तो मेरी मॉम के साथ कॉन्टैक्ट में रहने की क्या जरूरत थी। इशिका से बात करने के बाद आयशा ने फिर से राधिका की तरफ देखा और बोली, आप जानना चाहती है ना कि मैंने ऐसा क्यों किया? मेरे कॉलेज में इतनी मेहनत करने के बावजूद ये मुझसे बेहतर बन गई। अगर मैंने ये झूठ नहीं बोला होता तो नक्श मुझसे सगाई तोड़ देता, फिर आप सबकी नजरों में मेरी वैल्यू और भी कम हो जाती। मैंने ये सब आपके लिए किया है मॉम, आई विश कि आप इसे समझ पाती, लेकिन नहीं, आपको तो अभी भी ये इशिका ही सही लगेगी। इतनी गलतियां करने के बावजूद आयशा विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी। आयशा ने उन सबको अच्छा खासा सुनाया और फिर रोते हुए अपने कमरे में भागकर चली गई थी। उसकी इतनी बातों के बीच राधिका ने कुछ नहीं कहा था। आयशा ने सारा ब्लेम आसानी से राधिका पर डाल दिया था। वो सकते में खड़ी थी, उनकी आंखों में आंसू थे। राधिका ने सुबकते हुए पूछा, क्या सच में मैं एक बुरी माँ हूँ आदर्श? ये आयशा क्या बोल रही है? क्या मैंने सच में इसके साथ इतना अन्याय किया? राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने आयशा को इतना प्यार किया फिर भी वो उसे ऐसा क्यों कह रही थी। हाँ, कहीं ना कहीं वो गलत थी, क्योंकि न जाने क्यों उनके दिल में इशिका के लिए इतना प्यार था, जबकि उन्हें इशिका से नफरत करनी चाहिए थी। अनजाने में राधिका को लगने लगा कि उसने आयशा के साथ अन्याय किया है। आदर्श ने राधिका को शांत करवाकर कहा, राधिका प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हें ये चीज समझनी होगी कि आयशा हमारी खुद की बेटी है और इशिका एक बाहरी इंसान। बोलते हुए उन्होंने गुस्से में इशिका की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, अब तो सुकून मिल रहा है ना तुम्हें? हमारा परिवार तोड़ दिया, तुम्हारी माँ ने सिखाया होगा ये सब। पता है इशिका, जब तुम इतने सालों से हमारे घर पर नहीं आई थी तो इस घर में बहुत शांति थी, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मनहूस कदम यहाँ पर पड़े, हमारा हंसता खेलता परिवार फिर से बर्बाद हो गया। आज से तुम यहाँ कदम भी नहीं रखोगी। इशिका ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें नम होने लगी थी। उसने सोचा था कि आयशा की इतनी बदतमीजी के बाद फाइनली उसे सजा मिलेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा था।
आदर्श ने इशिका को घर आने से साफ मना कर दिया था। राधिका ने बीच में बोलना चाहा, लेकिन आदर्श ने उनसे सख्ती से कहा, बस करो राधिका, तुम बहुत मासूम हो और यहाँ लोग तुम्हारा फायदा उठाने के लिए तैयार खड़े हैं। मैं बस तुम्हें यही कहना चाहूँगा, तुम्हें अभी के समझ जाना चाहिए कि तुम्हारी खुद की बेटी कौन है और तुम्हारी सौतन की बेटी कौन। राधिका कुछ नहीं कह पाई थी। आदर्श की बातों ने साफ कर दिया था कि वाकई उसने आयशा और इशिका के बीच बहुत फर्क रखा है। इशिका से प्यार होने की वजह से वो उसकी लगातार तारीफ करती रहती थी, जबकि आयशा को वो बहुत बार उसकी गलती करने पर डांट देती थी। वहीं राधिका के चुप रहने पर इशिका के दिल में एक दर्द सा उठा। हालांकि उसे इन सब की आदत हो चुकी थी कि कोई उसे अपना नहीं समझता था, लेकिन फिर भी राधिका से दूर जाने का दर्द उसे महसूस हो रहा था। इशिका ने खुद को सख्त किया और राधिका से कहा, मैडम आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप बस अपना ख्याल रखिए, मैं ठीक हूँ। इशिका ने इतना ही कहा और फिर वहाँ से चली गई। बाहर आते ही उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे, जिसे वो जाकर भी नहीं रोक पा रही थी। इशिका एक कमज़ोर इंसान नहीं थी, लेकिन आज उसे बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। वहीं अंदर राधिका का भी कुछ ऐसा ही हाल था। पहले इशिका उसे राधिका आंटी कहती थी, लेकिन आज उसने पहले उसे मिसेस सिंघानिया तो बाद में मैडम कहा करके बुलाया था। इसी से साफ पता चल रहा था कि उनके रिश्तों में एक दूरी आ चुकी थी। आदर्श प्लीज़, राधिका ने बीच में बोलना चाहा, लेकिन आदर्श ने उसे चुप कराते हुए कहा, मैं तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ खुद पर ध्यान दो और अपनी बेटी के ऊपर। इस लड़की और इसकी माँ का एक ही मकसद है, हम लोगों की खुशियाँ बर्बाद करना, तुम्हें अब समझ जाना चाहिए। राधिका ने आगे कुछ नहीं कहा। वहीं इशिका जब सिंघानिया विला से बाहर पहुँची तो उसके पास एक कॉल आया। वो कॉल आशीष का था। इशिका ने अपने आंसू साफ लिए और कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ कॉल पर आशीष ने घबराई आवाज़ में कहा, इशिका मैं तुम्हें वो राज बताने के लिए तैयार हूँ, बस बदले में तुम्हें मुझे 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, क्या तुम उसे मुझे खरीदना चाहोगी? हाँ, इशिका ने तुरंत जवाब में कहा। इशिका ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि आशीष पैसे किसे देने वाला है। आज वो अगर फंस गया था तो वो उन्हीं की वजह से था। दूसरी बात, अगर वो आशीष को पैसे दे भी देती है तो वो पैसे वापस उसी के पास आने थे। आशीष ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है फिर वो पैसे तुम मुझे अभी भेज दो। इशिका आशीष को अच्छे से जानती थी, पैसे मिलने के बाद भी वो राज नहीं बताती, तो वो जवाब में बोली, पहले मुझे वो राज बताओ, उसके बाद मैं भेज दूंगी। नहीं, मुझे पहले पैसे चाहिए, आशीष चिल्लाकर बोला। उसकी आवाज़ से साफ जाहिर हो रहा था कि वो वाकई एक बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। इशिका आशीष की बातों के जाल में नहीं आने वाली थी। पिछली बार भी उसने पैसे दिए थे और फिर आयशा की बातों में आकर उसने उसे कुछ नहीं बताया था। उसने आयशा से भी पैसे मांगे थे, लेकिन आयशा के पैसे नहीं भेजने पर वो इशिका के पास आया था। ऐसे में इशिका चाहकर भी उसका यकीन नहीं कर सकती थी। वैसे भी धोखा देना उसकी फितरत में था। इशिका जानती थी कि आशीष को कैसे हैंडल करना है। वो बेपरवाही से बोली, अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं बेचना है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इशिका आशीष के जवाब का इंतजार करने लगी। वो आशीष की हालत जानती थी, ऐसे में आशीष के मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो जल्दी से हड़बड़ाकर बोला, नहीं, मैं लोकेशन भेज दूंगा तुम्हें, प्लीज मुझे बचा लो इशिका, वो मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं, अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो मुझे मार देंगे, मैं यहीं पास के शहर में छुपा हुआ हूँ, प्लीज मुझे बचा लो और पैसे दे दो। इशिका कुछ पल चुप रही और फिर बोली, क्या बात है, इस बार आप मेरे पास कैसे आए? आयशा से अपने हेल्प नहीं मांगी? मैंने मांगी थी, आशीष ने गुस्से में कहा, लेकिन उसने मना कर दिया, बोलती है मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। वो सिंघानिया फैमिली की बेटी है और उसके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। लगता है वो भूल गई है कि उसकी औकात क्या है। अगर मैंने सच बता दिया तो वो कहीं की नहीं रहेगी, फिर 1 करोड़ तो क्या, उसके पास एक फूटी कोड़ी तक नहीं रहने वाली। फिर आशीष ने बात बदलते हुए कहा, मेरी हेल्प करो, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, बट अगर तुमने अभी मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं उस राज के तुमसे 5 करोड़ रुपए लूंगा और ये तुम्हारे लिए महंगा पड़ने वाला है। पहले मुझे बताओ वो राज क्या है, फिर मैं डिसाइड करूंगी कि तुम्हें उसके 1 करोड़ रुपए देने हैं या 5 करोड़, इशिका ने जवाब दिया। वो आशीष के साथ खेल रही थी। इशिका को लगा कि वो आशीष को बातों की जाल में फंसाकर पैसों का लालच देकर उसे राज उगलवा लेगी, लेकिन आशीष भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। इतने दिनों की भागदौड़ के बाद आशीष थक चुका था, ऊपर से इशिका के सवाल उसे इरिटेट कर रहे थे। वो चिल्लाकर बोला, बोला ना कि ये राज बहुत जरूरी है और तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, तुम्हारी और सिंघानिया फैमिली से। मेरा सिंघानिया फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, नहीं मेरे साथ उनका कोई रिश्ता है, मैंने तो घर भी छोड़ दिया, इशिका बोली। इशिका को लगा कि आशीष को उकसाने पर गुस्से में वो सारी बातें उगल देगा, लेकिन आशीष ने कुछ नहीं बताया। वो बोला, जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दे देती तब तक इसके आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, मेरी भेजी हुई लोकेशन पर आ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इसी के साथ आशीष ने कॉल कट कर दिया और इशिका को अपनी लोकेशन भेज दी थी।